नेपथ्य में थिरकन। पहली जून 2005 की दोपहर, मोबाइल में प्रयाग जी, प्रयाग शुक्ल थे, बोले, भारत जी, मोनिका जी के बारे में तो आपको पता ही होगा। मैंने कहा, नहीं, क्या हुआ? वे नहीं रही। क्या, कब? 3-4 दिन हो गए, आपको पता नहीं? मैं उन दिनों जयपुर में था, जवाहरलाल केंद्र द्वारा आयोजित बच्चों की कार्यशाला से जुड़ा, टेलीविज़न और दिल्ली के अखबारों से पूरी तरह कटा हुआ। प्रयाग जी से मोनिका दी के निधन की जानकारी ने क्षुब्ध कर दिया। रंग प्रसंग के लिए लेख लिखने का वादा कर लिया पर मन प्राण में एक रिक्तता भर गई थी। हबीब साहब पर लिखी जा रही इस पुस्तक के संबंध में वे मुझे तरह तरह से उत्साहित करती थीं। कई जानकारियाँ, कुछ रोचक और भूले हुए से प्रसंग, कटु और मधुर अनुभव बताती थी। इस पुस्तक में उन तथ्यों का भरपूर उपयोग किया गया है। उनकी एक विशेष भंगिमा बार बार याद आती है। अभी साहब के रंगकर्म से संबंधित किसी सैद्धांतिक या वैचारिक पक्ष पर उनसे कोई प्रश्न करता तो वह निसंकोच कर देती, इस सवाल का जवाब तो मैं हबीब ही देंगे। शुरू में उनके इस रुख से ताज्जुब भी होता था। जीवन भर हबीब साहब के रंगकर्म से एक निष्ठ भाव से जुड़ी होने और रंगमंच तथा नाटक की गहरी समझ के बावजूद उन्होंने अपनी ओर से हबीब साहब के रंगकर्म के सैद्धांतिक या वैचारिक पक्ष पर कतई कोई टिप्पणी नहीं की। यद्यपि यह भी बहुत बड़ा सच है कि नाटक के किसी भी पक्ष पर हबीब साहब की दुविधा को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका भी उनकी ही रहती थी। उनके निधन के कुछ ही दिनों बाद यह समाचार मिला कि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने आया हबीब साहब दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सीढ़ियों से उतरते हुए वे फिसले और उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई। मैं अस्पताल में उनसे मिलने गया तो उनके जीवट को देखकर दंग रह गया। अस्पताल में ही दूसरी या तीसरी मुलाकात में मैंने साहस जुटाकर मोनिका दी के बारे में कुछ सवाल किए। उन्होंने अत्यंत सहज भाव से मेरे सवालों का जवाब दिया। उस कठिन समय में टुकड़ों टुकड़ों में हुई उनसे बातचीत के आधार पर ही मैं बहुत सी जानकारियां जुटा पाया। इस लेख का प्रमुख आधार वही बातचीत है। मोनिका दी, जन्म 3 अक्टूबर 1930, निधन 28 मई 2005, बिहार के एक ईसाई परिवार में जन्मी थी। पिता श्री एस के मिश्रा तत्कालीन अंग्रेज सरकार के रेलवे विभाग में सेवारत थे और उन्नति करते हुए विभागाधिकारी बन गए थे। उनकी माता श्रीमती मुक्तामाला दत्त पूरी तरह परिवार को समर्पित थी। मिश्रा जी के पूर्वजों ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, इसके बावजूद उन्होंने अपना जातिगत उपनाम नहीं त्यागा, इसलिए मोनिका दी ईसाई होने के बावजूद मोनिका मिश्र के नाम से ज्ञात रही। वे अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। दो बड़ी बहनें रानी और बानी भी स्वतंत्र वातावरण में पली और बड़ी हुई थी। स्वाभाविक था कि अपने परिवार में उन्हें व्यक्तिगत विकास के पर्याप्त अवसर मिलते। तत्कालीन रेल विभाग में नौकरी होने के नाते उनके पिता अनेक वर्षों तक शिमला में रहे। मोनिका दी का जन्म शिमला में ही हुआ था। शिमला उस समय अंग्रेज सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, अतः बचपन से ही उन्हें शिमला में अनेक ब्रिटिश कंपनियों के अंग्रेजी नाटक देखने का अवसर मिला। प्रभाव यह हुआ कि उनके अंतर्मन में रचे बसे रंगमंचीय संस्कारों ने उनकी दिलचस्पी नाटकों के प्रति गहरी कर दी। सन 1950 में लाहौर के प्रसिद्ध एनमेट कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते हुए ही वे अभिनेत्री के रूप में अत्यंत लोकप्रिय हो गई थी। बाद में दिल्ली के सेंट थॉमस कॉलेज तथा कनाट कॉलेज में भी उनकी रंगमंचीय गतिविधियाँ निरंतर जारी रहीं। सन 1952-53 में उन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका के कॉलोरेडो स्थित डेनवर विश्वविद्यालय से एमए इतिहास के अध्ययन के लिए विदेश चली गई। उस समय कॉलोरेडो विश्वविद्यालय के नाटक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कैम्पटन वैल थे, जो अपने नाटक प्रस्तुतियों और नए प्रयोगों के लिए ख्यात थे। उनके रंगकर्म से प्रभावित होकर मोनिका मिश्र ने ड्रामेटिक्स में डिप्लोमा कोर्स किया और पाश्चात्य रंगकर्म की शिक्षा दीक्षा लेकर भारत लौट आई। उन दिनों बम्बई रंगमंचीय गतिविधियों के प्रमुख केंद्रों में एक था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दिल्ली नाट्य संघ की शुरुआत कर ली थी और वे भारतीय रंगमंच की पुनर्स्थापना के आरंभिक दौर की जमीन तैयार करने में जुटी थी। परिसंवाद, भाषण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में मोनिका मिश्र की दिलचस्पी देखते हुए श्रीमती कमला देवी ने उन्हें दिल्ली नाट्य संघ की गतिविधियों से जोड़ लिया। तब उनके साथ श्रीमती विजया मेहता और पंडित शंभुनाथ थुलाल जैसे लोग भी थे। सन 1953-54 में दिल्ली नाट्य संघ ने जगदीश चंद्र माथुर के प्रसिद्ध नाटक कोणार्क का मंचन किया और मोनिका मिश्र ने उसका निर्देशन किया। मनसुख जोशी ने दृश्य बंध तथा वेशभूषा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हीं दिनों इब्राहिम अरकाजी मुंबई में थिएटर इंस्टीट्यूट के जरिए नए रंगमंचीय प्रयोग में जुटे थे। उनकी सूझबूझ और प्रयोगात्मक रंगमंच के प्रति उनकी गहरी निष्ठा से प्रभावित होकर मोनिका मिश्र थिएटर इंस्टीट्यूट से संबद्ध हो गई। इधर दिल्ली में बेगम कुदसिया जैदी ने हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना का बीड़ा उठा लिया था। वे हबीब साहब के आगरा बाजार की प्रारंभिक प्रस्तुति से बेहद प्रभावित हुई थी और उनके सहयोग से भारतीय पारंपरिक नाट्य प्रयोगों को व्यावसायिक स्तर पर मंचित करने के लिए संकल्पित थी। जब हबीब तनूर को रंगमंच के विशेष अध्ययन के लिए भारत सरकार और ब्रिटिश काउंसिल की छात्रवृत्ति मिली तो वे 2 वर्ष के लिए लंदन रवाना हो गए। हबीब तनवीर बेगम जैदी से यह वादा करके गए थे कि अध्ययन समाप्त करके वे भारत लौटेंगे और हिंदुस्तानी थिएटर का काम संभाल लेंगे। लेकिन जब 2 वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी हबीब तनवीर भारत नहीं लौटे तो बेगम कुदसिया जैदी ने धीरज खो दिया और हिंदुस्तानी थिएटर के लिए निदेशक की तलाश शुरू कर दी। तभी उन्हें मोनिका मिश्र के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर का काम संभालने के लिए मोनिका मिश्र को निमंत्रित किया। मोनिका दी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिला तो वे मुंबई छोड़कर दिल्ली चली गई। यह सन 1956-57 की बात है। हिंदुस्तानी थिएटर के लिए उन्होंने सबसे पहला नाटक निर्देशित किया कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का रूपांतर शकुंतला के नाम से। यह हिंदुस्तानी भाषा में किया गया था यानी हिंदी उर्दू मिश्रित जुबान में। इस प्रस्तुति ने हिंदुस्तानी थिएटर को अपनी पहचान बनाने में निहायत कामयाबी दी। नाटक की सफलता से प्रभावित होकर बेगम जैदी ने मोनिका मिश्र को दूसरे नाटक की कमान सौंपी। चार्लीज आंट का भारतीय रूपांतर भी बेगम जैदी ने ही किया था। तभी हबीब तनवीर 1 वर्ष अधिक गुजारने के बाद वापस लौट आया और मोनिका मिश्र के सामने एक दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। हबीब तनवीर को हिंदुस्तानी थिएटर की कमान सौंप दी गई और मोनिका मिश्र को नौकरी से हटा दिया गया। इस प्रसंग का जिक्र उन्होंने अनेक स्थलों पर किया किंतु पूनम गिरधानी से बातचीत का संक्षिप्त विवरण उद्धृत करना अधिक प्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा, दिल्ली में बेगम कुदसिया जैदी ने हबीब के लिए तो हिंदुस्तानी थिएटर खोला था। जब हबीब ट्रेनिंग के लिए विदेश गए तो उनकी जगह हिंदुस्तानी थिएटर में मुझे नौकरी मिल गई। उस वक्त तक मैं हबीब से नहीं मिली थी। कुछ नाटक खेलने के बाद मुझे हिंदुस्तानी थिएटर से निकाल दिया गया क्योंकि हबीब वापिस आ चुके थे। जब हबीब ने हिंदुस्तानी थिएटर में मिट्टी की गाड़ी का नाटक खेला उस वक्त मैं बेंगलुरु में थी। दिल्ली वापस आने के बाद जनपद की एक रेस्तरा आल्प्स में मैं अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हबीब तनवीर है। और मुझे तो खबर लेनी थी कि ये कौन है जिनकी वजह से मेरी नौकरी छिन गई। बस मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा, आर यू मिस्टर हबीब तनवीर? उन्होंने कहा, यस। मैंने कहा, आई एम मोनिका मिश्र एंड आई वॉन्ट टू यू टॉक टू यू। उन्होंने कहा, कैन वी मीट हियर टुमारो? हम दूसरे दिन दोबारा मिले, लेकिन हबीब की पर्सनैलिटी जिस तरह की है उन्होंने मुझे असल मुद्दे पर आने ही नहीं दिया। हबीब अपने तरीके से अपने रंगमंची अनुभवों की दिलचस्प बातें करते रहे। इस तरह हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। हम लोग कनॉट प्लेस में रोजाना मिलते। उसी दौरान बेगम जैदी ने हबीब को भी नौकरी से निकाल दिया। फिर मैंने जनपद के एक गैरेज में थिएटर करने का सुझाव दिया। यही सामने और हबीब ने थिएटर की शुरुआत एक साथ की। यह जमाना था 1959 का। हमारे पास एक पैसा नहीं था, फिर भी हमने नाटक किया। हबीब ने एक छोटे छोटे खुद के लिखे नाटक का मंचन किया। लाइटिंग के इंतजाम हम लोग कनस्तर को अंदर से रंग कर उसमें बल्ब लगाकर किया करते थे। विद्यासागर इसके इंचार्ज थे। पालिका बाजार के हाल में हमने काम करना शुरू किया। तब जरूरत महसूस हुई थिएटर ग्रुप के नाम की। मैंने कहा नया थिएटर, क्योंकि हम एक नया काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर। इसी नाम के साथ हमने 2 नाटकों का मंचन किया, रुस्तम सराब और मिर्जा शोहरत बेग। इनमें 2 छत्तीसगढ़ी कलाकारों गोविंद राम और मदन लाल ने काम किया था। दोनों ही बेहतरीन कलाकार थे। इस बातचीत में भी मोनिका दी ने अपने बारे में कुछ विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने कितने ही नाटक में प्रमुख भूमिकाएं निभाई और कितने ही नाटकों का निर्देशन किया। निर्देशन के बारे में उनकी सूझबूझ और कलात्मकता के अनेक प्रसंग हैं। उनमें से एक है 7 पैसे का निर्देशन। एक चेक कहानी का नाट्य रूपांतर हबीब तनवीर ने किया था, जिसमें एक अत्यंत निर्धन बालक साबुन की बट्टी खरीदने के लिए 7 पैसे जुटाना चाहता है। उसकी माँ उसका भरपूर साथ देती, लेकिन ये 7 पैसे इकट्ठा करना बड़ा दुष्कर कार्य है। नाटक में इन 7 पैसों को प्राप्त करने के लिए जिस नाट्य युक्ति का प्रयोग किया वह अत्यंत मार्मिक और कलात्मक है। उड़ती हुई तितलियाँ जैसे वे पैसे हैं जिन्हें काबू में लाना है। तितलियों को पकड़ने की कोशिश की तरह ही वे पैसे एकत्र करना चाहते हैं। बेहद थका देने वाली कोशिश के बाद जब बच्चा 7 तितलीनुमा पैसों को पकड़ पाता है तब तक उसकी माँ खून की उल्टियाँ करती हुई दम तोड़ देती है। तितलियों को पकड़ने की कोशिश को एक एक पैसा जमा करने की मशक्कत के रूप में प्रदर्शित करने में कितनी अधिक कल्पनाशीलता और भाव प्रवणता है इसे व्याख्यात करने की कोई जरूरत जान नहीं पड़ती। अभिनय की दृष्टि से भी मोनिका दी ने एक नहीं अनेक प्रसंग बहुत दिलचस्प है। संघर्ष के दिनों में उन्हें अनेक नाटक विभिन्न संस्थाओं कॉलेजों और दलों के लिए करने पड़े थे। USIS के लिए हबीब तनवीर ने इब्राहिम लिंकन नाटक में इब्राहिम लिंकन की भूमिका निभाई। निर्देशक टॉम उन्नान का था। उसमें मोनिका दे ने एलिजाबेथ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस नाटक में जॉय माइकल, सुषमा सेठ, रोशन सेठ आदि भी अभिनय कर रहे थे। अभी कुछ ही दिनों पहले जॉय माइकल उन दिनों की याद ताज़ा करके अत्यंत भावुक हो उठी। मोनिका दे की अभिनय क्षमता का एक और उदाहरण, अभी तनवीर पंचमढ़ी में अध्यापकों के लिए एक कार्यशाला का संचालन कर रहे थे। कार्यशाला में प्रत्युत्कृष्ट का नाटक गुड वुमेन ऑफ सुजुआ मंचित होना था। प्रदर्शन के ऐन पहले पादरी की भूमिका करने वाला कलाकार बीमारी या किसी अन्य वजह से उपलब्ध न हो सका। आनंद पानन में पुरुष भूमिका मोनिका ने दी, जिस खूबी से अदा की उसकी याद करते हबीब साहब की आंखों में चमक आ गई थी। मोनिका दी और हबीब साहब की शादी सन 1961 में हुई और इसके बाद ही धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। संघर्ष के दिन लदने लगे और नया थिएटर अपना रंग दिखाने लगा। 1970 में जब हबीब तनवीर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और आगरा बाजार की पुनर्प्रस्तुति हुई, तब तक नया थिएटर की रंगकथा एक नया मोड़ ले चुकी थी। 1973 में गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद और उसके बाद एक साल बाद ही चरणदास चोर की प्रस्तुतियों ने तो धारा ही बदल दी। इस धारा के बदलाव के साथ ही नया थिएटर ने मोनिका दे की भूमिका भी बदल दी। वे नया थिएटर के नेपथ्य में चली गई और आजीवन नया थिएटर के कलात्मक विकास की ताल पर थिरकती रही। नया थिएटर की प्रस्तुतियों ने शनै शनै ख्याति के शिखर पर चढ़ना शुरू किया और शनै शनै मोनिका मिश्र ने रंगमंच की अपनी सक्रिय भूमिका को छोड़कर आंतरिक व्यवस्था और संगठन संबंधी दायित्व को पूरी तरह ओढ़ लिया। ये कोई अनजाना तथ्य नहीं है कि हबीब साहब की सभी प्रस्तुतियों में, खासतौर पर नया थिएटर की प्रस्तुतियों में, दृश्यबंध, वेशभूषा, रंगमंच सामग्री आदि सभी कुछ में मोनिका दी का योगदान सर्वोपरि रहा। अपने दल के लोगों के खाने पीने, रहने ठहरने आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उनकी ही रहती थी। एक तरह से उन्होंने हबीब तनवीर की पूरी तरह रचनात्मक कारण कामों के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और नेपथ्य की संपूर्ण बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। हबीब साहब और मोनिका दी में परस्पर तालमेल का यह परिणाम रहा कि नए नाटकों की प्रस्तुतियों या पुनर्प्रस्तुतियों के समय आने वाली अनेकानेक कठिनाइयों से वे स्वयं जूझती रहीं और हबीब साहब को बेहद नाजुक मौक़ों पर ही सम्मिलित किया। हबीब साहब की रचनात्मक प्रखरता के पीछे मोनिका मिश्र की समर्पण भावना को नज़रअंदाज किया जाना नामुमकिन है। अपनी इकलौती बेटी नगीन के प्रति भी उनकी ममता अगाध रही। जीवन के अत्यंत क्लेश भरे दिनों में वे नगीन की माँ ही नहीं, एक सच्चे मित्र की भूमिका भी निभाती रहीं। नगीन के व्यक्तित्व के विकास में मोनिका दी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपथ्य की यह भूमिका रंगमंच की भूमिका से कम अर्थवान नहीं रही। मोनिका मिश्र नया थिएटर के नेपथ्य में रहीं, लेकिन उनकी थिरकर नया थिएटर को निरंतर उल्लसित करती रही।